बढ़िया लेख है। देखो वाल्मीकि रामायण की कथा बहुत थोड़ी रही है और चातुर्मास का भी समय बहुत थोड़ा रहा है। पहले जितनी इसमें कथा करते थे अब वो कम हो जाएगी, तो थोड़ा समय इसमें लग जाए बहुत बढ़िया बात है। कथा तो प्राय जानते भी है सुनते भी हैं, पर ये जो उपदेश की बातें है बहुत बढ़िया बात है, खूब मन लगाकर सुनना चाहिए। शांति और प्रेम की प्राप्ति, तीन बड़े दोष हैं। एक तो अज्ञता अनजानपना, एक अश्रद्धा और एक संशय। तीन बड़े दोष हैं। गीता में कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान को जाने ही नहीं, भगवान की बात में श्रद्धा होवे ही नहीं। थोड़ी बहुत श्रद्धा थोड़ी बहुत जाने, लेकिन कोई आदमी कहे देखा है कि भगवान है, भगवान है तो स्त्री के लिए रोवे क्या, भगवान है तो हनुमान जी के द्वारा सीता को मालूम करेंगे, और सब जानने वाले सब बैठे हुए, एक क्षण में संसार को भस्म कर देने वाले भगवान रावण को भी मार देते, ये सब क्या है, संशय की बात है। काय की भगवान, तो अज्ञता अश्रद्धा और संशय ये तीनों चीजें परमार्थ से भ्रष्ट कर देती है। जो बात बताई जाए उसमें संशय नहीं रखना चाहिए, और संशय का नाश ज्ञान से होता है, अच्छे पुरुषों के संग से होता है, और शास्त्रों का स्वाध्याय करने से होता है। भीतर का मल दोष नाश होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में श्रद्धा होती है। जैसे कांच है, कांच के ऊपर खूब मिट्टी धूल लगी हुई है तो उससे सूर्य का प्रकाश इतना पकड़ा नहीं जाएगा, और एकदम साफ कांच है सूर्य के प्रकाश में एकदम आंख चमका जाएगी। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए खान पान में बड़ी शुद्धि आनी चाहिए। खान पान पवित्र होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। गेहूं है, जौ है, दूध है, फल है, ये सात्विक है। सात्विक भोजन करने से सात्विक अंतःकरण होता है, उसके द्वारा भजन अच्छा होता है, बुद्धि दृढ़ होती है। जो हम खाते हैं वो न्याय की कमाई का होना चाहिए। दूसरे का द्रव्य अपने अंतःकरण को मेला कर देता, आपका हक है और मैं खाऊंगा तो ये मन को मेला कर देगा। शास्त्रों में बताया है अन्न की कमाई शुद्ध होनी चाहिए और अन्न स्वयं भी शुद्ध होना चाहिए। अन्न का अर्थ खान पान की सब चीजें। साधु हो, महात्मा हो, ब्रह्मचारी हो, इनको शुद्ध अन्न की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इनको शुद्ध अन्न मिले तो बड़ी सहायता मिलती है। पाप का पैसा खाने से बुद्धि अपवित्र होती है। लोग अधिकारी लोग रिश्वत खाते हैं, ये पैसा उनके लिए बड़ा खराब है। व्यापारी लोग अन्याय से आय करते हैं, उपार्जन करते हैं, अंतःकरण बड़ा खराब है। तोल में नाप में ज्यादा ले लेवे और कमती तोल करके देवे, ये बड़ा भारी पाप है, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक चीज में दूसरी चीज मिलावट करके दे देवे, देसी घी में डालडा घी मिला देवे, आटा में गंदा आटा मिला दे, खाने वाले को तकलीफ होगी, कोई मर भी जाए पाप लगेगा, मरकर नरक में जाना पड़ेगा। पैसा तो यही रह जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। नफा दलाली तय करके फिर अधिक लेना ये पाप है। झूठ बोलने का इतना पाप नहीं जितना दूसरे का धन हड़पने का पाप है। ये तो डकैती है। सुनार सोने की चोरी करता है, इसका शास्त्रों में बड़ा भारी पाप लिखा है, इसलिए शास्त्रों में सुनार का अन्न खराब लिखा है। नशे की चीज भांग बीड़ी सिगरेट प्राय 100 में से 90 आदमी करते हैं, इससे बुद्धि तमोगुणी हो जाती है, विवेक कम होता है, मरते समय में बेहोशी रहती है, बेहोशी में ही मर जाते हैं। गीता में कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक पुरुष स्वर्ग में, रजोगुण मनुष्य में, मनुष्य लोक में, और तमोगुणी लोग हैं वो निद्रा प्रमाद आदि में अधोगति में चले जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते हैं। सब नशों में सबसे ज्यादा खराबी मदिरा की है। 4 महापाप है, एक तो गुरु स्त्री गमन, एक सोने की चोरी, एक मदिरा पान, एक ब्राह्मण की हत्या। ये सब महापाप ब्रह्म हत्या के समान है। और 5वां यह भी है कि जो इनका संग करता हो, इसलिए डॉक्टर दवा नहीं खानी चाहिए, उसमें प्राय मदिरा रहती है। आहार बहुत शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों में लहसुन प्याज बहुत खराब बताया है। बैंगन और गाजर से भी बुद्धि में तामसीपना आता है। अन्य साग तरकारी सात्विक है। अमचूर राई ये राजसी है, इसलिए सात्विक आहार करें, न्याय से धन कमाएं। ब्राह्मण के लिए न्याय है यज्ञ करे करावे, वेद पढ़े पढ़ावे, दक्षिणा ले, बिना याचना के जो आ जाए वो शुद्ध है। उससे भी ऊंची वृत्ति शास्त्रों में सीलोंस वृत्ति बोलते हैं, कपोत वृत्ति बोलते हैं। जैसे कबूतर को बेचारे को कहीं कहीं से मिल गया भोड़ा भाड़ा खा लिया, ऐसे कबूतर वृत्ति में रहे। खेत में से किसान अनाज ले आते हैं, वहां कुछ दाने गिर जाते हैं, उनको लेने का नाम कपोत वृत्ति है। घर बैठे कोई भिक्षा आगे आ जाए, ये 3 नंबर की बात है। परंतु इसके बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपत्ति काल में मनु ने कहा है कि ब्राह्मण वृत्ति से काम नहीं चले तो क्षत्रिय वृत्ति से काम ले लो, और क्षत्रिय वृत्ति से भी काम न चले तो वैश्य वृत्ति से ले लो, पर आगे न जाए। वैश्य वृत्ति के बाद भी काम न चले तो मर जाए, पर आगे न जाए। शूद्र वाला काम न करे, नौकरी नहीं करे, हाथ से हल न चलाए, और रस न बेचे, रस दूध है घी है, ये पका हुआ अन्न भी बताया है, पका हुआ अन्न ये क्यों नहीं बेच पता नहीं, रस थोड़े ही पका हुआ अन्न है। इसी प्रकार क्षत्रियों के लिए सबसे उत्तम वृत्ति है राज्य में किसी पद पर नियुक्त हो जाए, राज्य में किसी तरह की नौकरी करें, अच्छा काम है, भाड़े का काम बहुत अच्छा है। क्षत्रिय के लिए खराब काम है चोरी करना, लूट मार करना। वैश्य के लिए व्यापार करना और खेती करना न्याय का काम है। शूद्र के लिए कारीगरी का काम न्याय का अच्छा काम है। ये आजीविका पवित्र मानी गई है। हर एक मनुष्य को न्याय से उपार्जन करना चाहिए। आपने पूछा कि जो बात सत्संग में चलती है वो मन में धारण नहीं होती, क्या कारण है? तो हमारी दृष्टि से तो अंतःकरण का दोष है, मल दोष, खराब हो गया अंतःकरण, वो भगवान के भजन से दूर होता है। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी 14 माला फेरो। 14 माला माने एक मणियो आवे ने जितने एक बार हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर आगे एक मणियो ले। 7 सुबह फेर लो, 7 संध्या ने फेर लो, 14 माला फेर ले तो 22,000 नाम हो जाते हैं। 21,600 श्वास हमारे 24 घंटे में निकलते हैं, ऐसे मुंह से श्वास नहीं लेकर के नाक से श्वास लेना चाहिए, श्वास लंबा होता है, आयु बढ़ती है। ऐसे नहीं, नाक से श्वास लेना चाहिए। चलते फिरते हर समय भगवान को भुलावे ही नहीं, आठों पैर पीपल की तरह घूमता रहे। जब करने से पापों का नाश होता है, संयम रखे, उपवास करे, ये तपस्या है, तपस्या से पाप का नाश होता है। सत्संग करे, कथा सुने, इससे बहुत लाभ होता है, पापों का नाश होता है। सबका हित करें, इससे भी पाप का नाश होता है। दूसरे का भला करें, इससे भी पाप का नाश होता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम भाव से यज्ञ वगैरह करें, प्राणायाम करें, प्राणायाम तीसरी आंग, एक अंग, दो चीज काम आता है। पहले तो पूरा सांस बाहर निकाल दें, सांस भरे हुए धीरे धीरे जितो ले सके धीरे धीरे ले जा, सांस न रो फिर निकाल, फिर बाद में रोक कर रख कई देर तक जितो रुक सके। भी मंगाए हुए राम 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 करते रहने से मदी मदी जी नाक सांस बारे काटे, 20-25 सांस ले रहे, फिर इसु निकाल दे, फिर इसु खींचे, फिर इसु निकाल, एक सु नहीं निकाल कर, इसु खींचे तो इसु निकाले, इसु खींचे तो इसु निकाले। प्राणायाम करें, प्राणायाम से पाप का नाश होता है। तीर्थ के स्नान से, भगवान के मंदिर दर्शन करने से पाप का नाश होता है। एक एक चीज पाप नाश करने वाली है, तब श्रद्धा पैदा होती है। ये व्याख्यान देने वाले पुरुष भी अच्छे होने चाहिए, सत्यवादी होने चाहिए, धर्म पर चलने वाले होने चाहिए, तब इनके वचनों में ताकत होती है और तब सुनने वाले के मन में बैठती है। पर क्या करें, ऐसे पुरुष मिलते नहीं है, कठिन है। भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्त्वतः। मेरी तरफ चलते ही नहीं, चलने में कोई कोई मेरे तक पहुंच पाता है, सब बीच में फिसल जाते हैं। थोड़ा आराम सुख सुविधा मिली फिसल गए। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करे। मेरे क्या करे, दुनिया के लोग तो खाने पीने मौज उड़ाने में लगे हुए हैं। मनुष्य शरीर अरे आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, हजारों में कोई आदमी इस बात को जानता है। अपने यहां 500-600 आदमी सत्संग करते हैं, दुनिया में तो लाखों आदमी सब सत्संग करते हैं नहीं करते, सब भजन ध्यान करते हैं नहीं करते। बहुत से लोग मरते दम तक रुपया रुपया करते करते मर जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। उनको कोई भगवान मिलते हैं क्या? तुलसीदास जी ने कहा कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे भगवान में प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार है, तुलसीदास जी स्त्री के उपदेश से भजन में लग गए, उसका प्रभाव क्या पड़ा, कितने ग्रंथ बनाए। आज उनकी बातों को पढ़ पढ़ करके लोग जो शांति प्राप्त करते हैं। कर्म करने से मनुष्य सब कुछ बन सकता है। तो ऐसे आदमी उपदेश देने वाले बहुत कम है। यदि महात्मा उच्च कोटि का हो तो ये बात धारण हो जाए। कहने वाला तो उच्च कोटि का है, सुनने वाला कमजोर हो तो भी धारण हो जाए। कहने वाले में ताकत ज्यादा होनी चाहिए, परंतु आज तो दोनों में गड़बड़िया है। कहने वाले में भी और सुनने वाले में दोनों में गड़बड़ी है। सुनता रहता है तब भी काम नहीं बनता, और वो कहता रहता है खुद वो वैसा चलता नहीं। अंतःकरण की अशुद्धता के कारण से बात धारण नहीं होती है। कैसा भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पाप किया हो, भगवान के नाम से उतर जाता है। बड़े बड़े पापी तर गए, अजामिल है, गज है, गणिका है, फिर हम लोग तो उन पापियों में आते भी नहीं है। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान से बढ़कर कोई साधन नहीं। जितने उच्च कोटि के महापुरुष संसार में हुए हैं उनमें प्रधान बात भजन ध्यान की थी। भजन ध्यान करते थे, ध्यान से सुनना। परम धाम वैकुंठ ये एक ही चीज है। राग द्वेष नहीं रहता। जिसमें राग द्वेष होता है वो परम धाम या वैकुंठ को नहीं जा सकता। वहां झूठ कपट चोरी नहीं चलती। वहां तो भगवान के भजन ही भजन करने की इच्छा होती है, कोई विकार नहीं रहता। वो वैकुंठ अत्यंत शुद्ध है, निर्विकार है, और कोई रोग नहीं होता। वैकुंठ का शरीर अनामय है। अनामय माने निरोग, पूर्ण आनंद है। उससे बढ़कर कोई आनंद है ही नहीं। हृदय में भगवान के विषय में कोई संदेह रहता ही नहीं। भगवान का दर्शन हर समय होता रहता है। सब प्रकार से शांति है, मन में विक्षेप नहीं है। आनंद का तो पारावार ही नहीं रहता। आनंद ही आनंद है, और है ही क्या। ये परम धाम की लक्षण है। और ये परम धाम प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। त्रिलोकी में जो आनंद है वो सब मिलकर के भी परमात्मा की प्राप्ति के समान हो ही नहीं सकता। एक बात और कहते हैं, भगवान का ऐसा ध्यान हो कि विव्वल हो जाए, विव्वल भगवान प्रकट हो जाए। भगवान का प्रकट होना अपने सामर्थ्य के बाहर है, परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तुल जाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। अपने में जितना प्रेम होगा उतने हम भगवान के निकट हैं। दर्शन नहीं होते हैं तो कहीं प्रेम की कमी है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। उनकी दया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका ध्यान ऐसे लगाए शरीर और संसार का ज्ञान ही नहीं रहे, समाधि लग जाए। समाधि लगाना बड़े भाग्य की बात है। ध्यान के पहले आसन से बैठना चाहिए। सबसे बढ़िया बालू का आसन है। बालू अपना धोरा ऐसा समझकर वैराग्य पूर्वक रहो। संसार के सुखों को भुला दो। इंद्रियों के द्वारा जो संसार का अनुभव होता है उसका त्याग करो, झूठा है। मन में जो कामना हो उनको फफेड़ दो। क्या कर, अपने मन से बार बार पूछो कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, अपने मन से ही उत्तर दे कि कुछ नहीं, क्या चाहता है, कुछ नहीं। देख मैं ध्यान में बैठता हूं, फिर तो देख कि इन चीज की कामना करेगा कि नहीं करूंगा। ऐसे मन को नहीं के अंदर मजबूर कर दो, ऐसा ध्यान लगाओ कि संसार को बिल्कुल बुलाकर भगवान को पकड़ ले। एक बात की सावधानी रखना, संसार को भूलते ही नींद आती है, और थोड़ी सी कमर ढीली पड़ जाए तो नींद आती है। संसार का ध्यान छोड़कर परमात्मा का ध्यान करो, संकल्प रहित होकर मन को परमात्मा में लगाओ। ऐसे मेरी शरीर नष्ट हो जाए तो बेड़ा पार है, भगवान को बुलाओ। ध्यान में भगवान आ जाए तो खूब स्वागत करो, ध्यान के भगवान को साक्षात मानो। सारे संसार में शांति आनंद छाया हुआ है, अब भगवान प्रकट हो गए, प्रेम में विभल हो जाए। मन में सोचे कि वाह, आपने ध्यानावस्था में दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा की, आहा कैसा दिव्य चिन्मय रूप है जो मुझे दिख रहा है, प्रकाश का पुंज है, बड़ी सुंदर आकृति है, शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, भगवान प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की वर्षा हो रही है, भगवान के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मस्तक से लेकर चरणों तक, चरणों से लेकर मस्तक तक ध्यान करें, फिर मुख पर नेत्रों को जमा दें। यूं तो मुख पूरा ही कहलाता है, ज्यादा होठ, नेत्र, कृपा चाहिए तो नेत्रों की तरफ देखो, और प्रसन्नता चाहिए होठों पर देखो। भगवान हंस रहे हैं, मोहित कर रहे हैं, ध्यान करो मैं उनके चरणों को छू रहा हूं, अरे इतना आनंद आ रहा है, चरण का स्पर्श होते ही आनंद आता है, सारे शरीर में रोमांच हो जाए, ऐसा आनंद है। भगवान के चरणों की अंगुलियां चमक रही है, नूपुर पहन रखा है, आहा भगवान के चरणों से मधुर मधुर ध्वनि आती है। भगवान के घुटने जंघाएं बड़े सुंदर है, सारा शरीर चम चम चमक रहा है, पीतांबर पहन रखा है, भुजाओं में शंख चक्र है, गदा पद्म है, या कलाइयों में कड़ा है, बाजूबंद है, चार हाथ है, छाती चौड़ी है, कंधा यो रिष्ट पुष्ट है, गले में पुष्प की माला है, बढ़िया एक एक से एक एक गहने हैं, रत्नों की मोतियों की कंठी है, कौस्तुभ मणि यहां बीच में चम चम चमक रही है, ठोड़ी सुंदर है, ओठ चमक रहे हैं, दांतों की पंक्ति हीरों की पंक्ति की तरह एकदम जड़ी हुई सुंदर मालूम देती है, नेत्र खुले हुए हैं, नेत्रों में बड़ा भारी ज्ञान का भंडार दिख रहा है, नेत्रों के भीतर बड़ी भारी शांति है, बड़े समभाव से देख रहे हैं, दया भरी पड़ी है, प्रेम भरा पड़ा है, प्रेम की और आनंद की तो वर्षा ही कर रहे हैं, भगवान के सारे गुण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हा मैं भगवान के नेत्रों की ओर देख रहा हूं, भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, अब क्या चाहिए, किससे मिलना है, कुछ नहीं, भगवान के नेत्रों से समता, संतोष, क्षमा, दया, आनंद, प्रेम सब बरस रहा है, लूट लो, लूट लो, रोम रोम में प्रेम और आनंद व्याप्त हो जाए। भगवान को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूं और वो मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उनके नेत्र कमल के पुष्प की तरह खिले हुए हैं, मुकुट चमक रहा है, पीतांबर चमक रहा है। कैसा आनंद है, कैसी शांति है। आहा, आनंद के समुद्र में डूब गए। ये ध्यान की बात है। साक्षात दर्शन देवे तब कितना आनंद है, उसकी क्या बात हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। आज के इस कलिक युग में थोड़े समय में भगवान दर्शन दे सकते हैं। बस अपने मन को संसार से समेट कर भगवान में लगा कर। भगवान का मुखारविंद चमक रहा है। जितना सुंदर भगवान का स्वरूप हम ध्यान में देखेंगे उतना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाएगा, चमकने लग जाएगा। जहां नेत्र जाए वही भगवान है। प्रेम भाव से देख रहे हैं। दुनिया में जो चीज प्रभाव वाली है वो भगवान की है। अपना मन जहां जहां जाए वहां भगवान को देखता रहे। ध्यान में इतना मस्त हो जाए कि बाहर का ज्ञान ही न रहे, कराने पर भी न रहे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। देखो कैसी शांति है। इस अवस्था में क्या विक्षेप हो सकता है, नहीं, निकट ही नहीं आ सकता। जहां भगवान साक्षात विराजमान हो रहे हैं उसमें माया का कहीं स्थान नहीं है। ये प्रत्यक्ष में शांति का उपाय है। महान प्रकाश हो रहा है। शरीर में जो चेतनता है वो भगवान का ही प्रताप है। नारायण नारायण ना।